हम लोगों की मेजॉरिटी तिलावत जो होती है वो एक लफ्ज नहीं समझते हम के क्या पढ़ रहे, मगर शैतान हमको जो है पीठ थपक के समझा रहा है कि आप कुरान की तिलावत करके घर से निकले। एक मेरा ही एक तजुर्बा हुआ था आज से 20-30 साल पहले, कोई 70-80 बरस के कोई साहब महफिल में बैठे हुए थे, मैं कुरान और साइंस पे कुछ टॉक दे रहा था, तो एक आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाया तो ऑडियंस में से खड़े रह के बोले ये कुरान में नहीं है। बोले वो इत्तेफाक से किसी साहब के जेब में कुरान था, वो निकाल के आयत पढ़ के सुनाए, तो आप बोले मैं 60 बरस से कुरान पढ़ रहा हूं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। पूरे ऑडियंस हंस दिए कि ये हमारी तिलावत है कुरान। तो यहां कुरान की अहमियत बताई जा रही है कि देखो ये ऐसी किताब है कि तुम इसको पढ़ के समझ के अमल करने की जब नीयत रखोगे तो एक एक हर्फ पे तुमको 10-10 नेकियां लिखी जाएंगी। फिर पढ़ने की नेकियां अलग, समझने की जो कोशिश होती है उसकी नेकियां अलग, अमल के नीयत की नेकियां अलग, अमल की नेकियां अलग। ये ऐसी किताब है। अब उसकी तशरीह यूं आ रही है कि तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात हैं, जुमले हैं एक ऐसी किताब के जो हिकमत से भरी हुई है। अब एक एक लफ्ज को अगर हम एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें, तो तिलका का मतलब तो ये है जैसा जालिका का मतलब वो है। आयत किसको बोलते हैं? आयत निशानी को बोलते हैं जिससे कुछ पहचाना जाए। जैसा एक घर पे लाल बल्ब लगा हुआ है, आप समझ गए कि डॉक्टर का घर है, रोशनी है उसमें, तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब अंदर है। वो बल्ब जो है आयत है, निशानी है डॉक्टर साहब को पहचानने की। तब ये आयत जो होती है, एक तो मौजूदे को बोलते हैं जिससे आप अल्लाह ताला को पहचाने, ये तमाम जो दिन रात की हेर फेर हो रही है, बारिश हो रही है, तमाम जो हो रहा है ये भी आयत है अल्लाह ताला को पहचानने के लिए। और कुरान के जुमलों को भी आयत कहा गया इसलिए कि इससे भी अल्लाह ताला ही को पहचानते हैं। ये अल्लाह का कलाम है, इसका इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। चैलेंज है ये। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि एक सूरत ले आओ, इन्ना आतैना कल कौसर, कोई एक सूरत ले आओ। आज 1450 बरस गुजर गए, कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये ऐसी किताब है जिसके जुमलों में हिकमत भरी हुई है। ये किताब में जो है हिकमत भरी हुई है। अब किताब किसको बोलते हैं? अब हमारे पास किताब का मतलब सिर्फ किताब का आ गया। कुतिबा अलैकुम सियाम, रोजे तुम पे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कानून बनाया जाता है कि तुम रोजे रखें, तो रिकॉर्ड को बोलते हो, अहकामात को बोलते हैं। ये ऐसे अहकामात का मजमुआ है, कलेक्शन है, जो हकीम है, यानी इस किताब में हिकमत भरी हुई है। कासमीम का जो मादा है, मैं बार बार समझाते चले जाता हूं क्योंकि असमाउल हुस्ना में भी बात आती है हकीम की। तो हकीम का मतलब क्या होता है कि पहले हिकमत, जिसको बोलते दानाई, विजडम। वो दानाई भी बाज लोगों को समझ में नहीं आता, जिनको इंग्लिश आती वो विजडम समझ सकते हैं कि इस किताब में विजडम है। विजडम की बुनियाद पर कुछ फैसले लिखे गए हैं। हाकिम जो होता है फैसले करता है, कुछ फैसले लिखे हुए हैं, और ये है काफ मीम से इस्तेहकाम है, और इन फैसलों में इस्तेहकाम है, फर्मनेस है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बात साबित हो गई कि भाई ये ऐसी किताब है जिसमें विजडम की बुनियाद पे कुछ फैसले लिखे गए हैं, और वो फैसले ऐसे मुस्तहकम हैं, फर्म है कि उसको कोई नहीं बदल सकता। लिहाजा 1450 बरस गुजर गए, एक हर्फ कुरान का जो है इधर उधर नहीं हुआ। चैलेंज है। सूरह हिजर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जिक्र हमने नाजिल किया और हम इसके हाफिज हैं, इसके आगे पीछे से कहीं झूठ दाखिल नहीं हो सकता। आकाना लिन्नासी अजबन अन ओहेना इला रजुलुम मिनहुम, क्या इंसानों को एक अजीब बात दिखी कि हमने इन्हीं में से एक इंसान पर वही नाजिल की, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से थे। इनको अजीब मालूम हुआ कि इन्हीं में से एक नबी बन के खड़े रह गया। देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर जो महावेरा हमारे पास है, ये मामला है। हमारे पास एक से एक आलिम पढ़ा हुआ है हैदराबाद में, कोई नहीं जाते उसको सुनने के वास्ते। वो अखबार में आता बंबई से फला आलिम आ रहे हैं, बेंगलोर से फला आलिम आ रहे हैं, कलकत्ते से फला आ रहे हैं, मजमा जमा हो जाता। एक से एक बेहतरीन चीज इंडिया में बन रही है इस वक्त, एक से एक बेहतरीन बन रही है। लेकिन अगर कोई इंग्लैंड का या यूएसए का लेके आया, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन यूएसए में, तो फौरन आप बाहर का खरीद, जो यहां रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को निचोड़ रहे हैं अल्लाह ताला, कि इन लोगों को कुछ अजीब सी बात मालूम हुई कि इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसपे हमने वही नाजिल की। वही नाजिल करने का मकसद क्या था? अनजीर नासा व बशीर लजीना आमनु अन्ना लहुम खदमा सिद्क इंद रब्बिहिम, के वो इंसानों को चौकन्ना करें। कैसे चौकन्ना करें कि देखो तुम ये किताब पे अगर अमल नहीं करोगे तो दोजख में जाओगे, दुनिया भी खराब होगी आखिरत भी खराब होगी। और बशर यानी इनको खुशखबरी दे वो लोगों को जो इस पे ईमान लाए अमल करे, उनको खुशखबरी दे कि उनके कदम ये इकदाम शुरू करने को भी बोलते हैं, कदम मुस्तकिम कायम रहने को भी बोलते हैं और एक आगे भेजने को भी बोलते हैं, सिद्क जो है सच्चे को बोलते हैं, कि इनके लिए एक सच्चा मुकाम फॉर्म फुटिंग जो है जन्नत की शक्ल में अल्लाह ताला के पास पहले से मौजूद है, इंदर रब्बहुम इनके पालने वाले मालिक के पास जो है पहले से मौजूद है, वो लोग जो इस किताब पे ईमान लाते हैं अमल करते हैं। खालल काफिरूना इन्ना हाजा लसाहिरुम मुबीन, और काफिर कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक एक खुले हुए जादूगर है। देखिए इसमें थोड़ा साहिर के लफ्ज पे जो है जरा गौर करना है कि ये काफिरों का जुमला है, नऊज़ु बिल्लाह, ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले हुए जादूगर है। अब एक ये माने जादू के अगर लिए सहर के तो एक बात समझ में आती कि भाई कुरान सुनाते चले जा रहे हैं, इस्लाम फैलते चले जा रहा है। देखिए अब जैसा 9/11 जो मशहूर डेट है जिसमें वो टावर्स वगैरह गिरे थे, उसके बाद में अमेरिका में कुरान का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि न्यूज में पढ़े हैं कुरान का शॉर्टेज, लोग पढ़ने देखने लगे आखिर क्या है इस्लाम। और मैं डिस्कवरी चैनल पे जो है वहां से सुना हूं मैं कि एनुअली 35,000 अमेरिकन्स आर एक्सेप्टिंग इस्लाम। क्या करके एक्सेप्ट कर रहे हैं? कुरान पढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुरान कैसा पढ़ रहे? तर्जुमे पढ़ रहे हैं, तजवीद नहीं आती उनको, तर्जुमे पढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तर्जुमे पढ़ने के बाद उनकी जो तजवीद होगी हमसे बहुत बेहतर होगी तजवीद, हम तजवीद में आ गए कुरान नहीं पढ़े। तो यहां यह बात आ रही है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते चले जाते हैं तो लोगों पर असर होता चला जा रहा है। हज्जतुल विदा में अल्लाह के फजल से जो रिवायतों में बात आई, 1,25,000 सहाबी जो है हज किए थे 23 साल की मेहनत में, 1,25,000 सहाबी जो है हज किए थे, तो कितना नहीं इस्लाम फैल गया था। तो अब लोग बोले ये तो जादू है, ये इधर पढ़ के सुनाते उधर लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक माने ये हुए। दूसरे माने शहर के झूठ के आते, धोखे के आते। जैसा अल्लाह इंशाल्लाह रमजान का महीना आ रहा है, लैल रात को बोलते हैं, फजर सुबह को बोलते हैं, यानी रोशनी को अंधेरे को फाड़ के, फजर फाड़ना, अंधेरे को फाड़ के सूरज निकल जाता है, जब निकलने आता है तो रोशनी आती है तो फजर बोलते हैं। ये लैल और फजर के बीच का जो वक्त रहता है सहर बोलते हैं, इसीलिए उसको सहरी बोलते हैं। अब ये सहर का वक्त बड़ा धोखे का वक्त रहता, अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो समझ में नहीं आता कि रात है या दिन शुरू हो गया। तो शहर में जादू के अलावा धोखे का भी सेंस है, तो ये भी माने हो सकते हैं नऊज़ु बिल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले तौर पे धोखा दे रहे हैं। ये मतलब इसलिए भी समझ में आता थोड़ा बहुत कि उनके पास जो बुत परस्ती का माहौल चल रहा था इसके खिलाफ बात बोल रहे हैं। ये भी बात है, ये क्या है 360 बुतों को इन्होंने एक अल्लाह में तब्दील कर दिया। यानी हमारे बाप दादा जो है क्या गलती पे थे इतना सब करते थे? तो ये नऊज़ु बिल्लाह झूठे हैं। तो ये दोनों ज़हन में मतलब रखें, इन्ना रब्बकुम अल्लाहुल लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। अब ये बड़ी जबरदस्त आयत है, इस पर काफी वक्त गुजारना पड़ेगा। अब देखिए, इन्ना रब्बकुम अल्लाह, रब कौन होता है? मालिक, पालने वाला। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे, भाई आपसे मिलिए, आप फलानी कंपनी में काम करते हैं, आपका ये पावर्स हैं, ये है, ये सैलरी है, तारुफ हो रहा है। तो तुम्हारा रब, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा मालिक कौन है? अल्लाह है, ये तो मालूम हो गया, इसमें जात अल्लाह है। ये अल्लाह कैसा है? अल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, यानी ये अल्लाह ऐसा है कि उन्होंने आसमानों और जमीन को 6 अय्याम में बनाया। एक एक लफ्ज को हम देखेंगे। सुमस तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पे तवाजुन कायम किया, युदब्बिरुल अम्र, और ये पूरा मामला वही चलाता है। इसमें पूरी एस्ट्रोनॉमी भरी हुई है, पूरी एस्ट्रोनॉमी भरी हुई है। समावात को लीजिए आप, खलक का मतलब क्या है? एक लफ्ज आता है बदी, बदी का मतलब होता है कि कोई चीज वजूद में नहीं है उसको वजूद में लाना, ये होता है बदी। خالق کون ہوتا ہے؟ ایک چیز وجود میں ہے اس سے کوئی اور چیز بنانا وہ خالق ہوتا ہے. خلق الانسان من طین, مٹی تھی مٹی سے انسان کو بنایا خلق. فاطر کون ہوتا ہے؟ جو اس کو فطرت عطا کرتا ہے, پہل کرتا ہے, چیرتا ہے اور اس کو فطرت عطا کرتا ہے, یہ فاطر ہوتا ہے. اس کے بعد میں باری کون ہوتا ہے؟ کہ یہ بنانے میں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکال دیتا ہے. مصور کون ہوتا ہے؟ اس کو پالش دے کے ایک بالکل فنش پروڈکٹ سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے. چائے کا جھاڑ نہیں تھا بدی, اللہ تعالیٰ نے چائے کا جھاڑ پیدا کیا. آپ اس میں پانی ڈالتے رہے, خلقت کرتے رہے, اس کو پالتے رہے, جھاڑ بڑا, پتے نکالے, اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فطرت عطا کی کہ اگر وہ پیئیں گے تو برین جو ہے ایکٹیویٹ ہوگا. چائے کے پتوں میں جو بات, تو اب آپ کیا کرے, پروپورشن کرے, خلقت کرے, چائے کے پتوں کو پانی میں ملا کے ابالے, چائے بن گئی. اب بری کرنا ہے پتوں کو, پتوں کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے. باری ہے, جو چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ چھان کے نکال دیا. اس کے بعد میں چائے چھن گئی, چائے میں دودھ ڈالے, شکر ڈالے, اس کا فائنل پروڈکٹ دے دیے, شیپ دے دیے. یہ مصور ہے, تمام کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اب یہ آسمانوں کو انہوں نے خلقت کی, کیسے خلقت کی؟ ایک مادہ تھا جو بگ بینگ ہوا, یہ میں انشاءاللہ اس پہ پھر آتا ہوں. پہلے آسمانوں کا سٹرکچر ہم کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جانا چاہیے. دیکھیں یہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. اب ہمارا جو نظام ہے, آسمان سما کا مطلب یہ ہوتا ہے لیولز, ارض لوئر لیولز, سما ہائر لیولز, اونچے کے لیولز. تو پہلا لیول ہمارا جو ملتا چاند کا ملتا, 3500 کلومیٹرز کا پہلا لیول ملتا. دوسرا لیول ملتا سورج کا, 150 million kilometers دور ہے, 93 million miles, 150 million kilometers دور. تیسرا لیول ملتا پلانیٹری سسٹم جو ختم ہوتا ہے, 3600 million miles کا جو ہے پورا سرکل ختم ہوتا ہے. تیسرا لیول, تیسرا آسمان. چوتھا لیول گیلیکسی کا جو ملکی وے ہے, یہ گیلیکسیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1500 to 3 lakh لائٹ ایئرس تک بڑے ہیں. لائٹ ایئر کس کو بولتے ہیں؟ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 lakh kilometers ٹریول کرتی ہے. روشنی ایک سیکنڈ میں 3 lakh kilometers ٹریول کرتی, تو ایک سال میں کتنا ٹریول کرے گی؟ ایک منٹ میں انٹو 60, ایک گھنٹے میں انٹو 60, ایک دن میں انٹو 24, ایک سال میں انٹو 365. تو 1500 لائٹ ایئر سے لے کے گیلیکسیز کی جو سائز ہے 3 lakh لائٹ ایئرز ہے, یعنی ایک سیکنڈ میں 3 lakh kilometers کی رفتار سے روشنی 3 lakh years تک ٹریول کرتے رہی تو یہ گیلیکسی ہے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض وقت یہ فگرز دیکھ کے بخار آتا, کچھ عجیب سی طبیعت ہوتی. کئی لوگ بولے کہ صاحب یہ امیجن کرنے لگے تو اندر سے طبیعت کیسی ہو جاتی ہے. تو یہ چوتھا لیول گیلیکسیز کا ہے. پھر اس کے لوکل گروپ آف گیلیکسیز ہیں, چھٹا لیول, پانچواں لیول, یعنی جو ہمارے ملکی وے میں جو ہے 15-16 گیلیکسیز کا لوکل لیول ہے. پھر اس کے بعد میں سپرا لیول آف گیلیکسیز ہیں. یہ سپرا لیول آف گیلیکسیز پھیلتے ہیں. یہ ساتواں لیول ایکسپینڈنگ یونیورس کا ہے, اور 15 billion years سے یہ کائنات پھیل رہی ہے. 15 billion years سے, 15,000 million years سے یہ کائنات پھیل رہی ہے. اور بعض گیلیکسیز کی سپیڈ معلوم کرے ہیں, ہاف دی ویلوسٹی آف لائٹ, یعنی ان کے پھیلنے کی جو سپیڈ ہے 150,000 kilometers per second کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے. 15 billion years سے پھیل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ بکل شیء محیطا. کیا ہے اللہ تعالیٰ, سمجھ سکتے آپ؟ نعوذ باللہ تصویرہ بنا دیے, مجسم بنا دیے, سمجھ سکتے آپ اللہ تعالیٰ؟ آپ خالی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اپنی پوری نالج سے. کوئی ایک سائنٹسٹ کا قول ہے کہ the impenetrable knowledge below the particles, ultimate particles, جو ایٹم مالیکیول, and the knowledge beyond the expanding universe, जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, फोर्सेस मी टू बिलीव इन एन एंटिटी हुम आई कॉल गॉड। यानी एटम्स से छोटे से छोटा चले जा रहा, समझ में नहीं आ रहा हमारा। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फैलते चले जा रही, समझ में नहीं आ रहा उसके आगे क्या है। तो ये बात मुझे मजबूर करती है कि मैं एक शख्सियत को मानू जिसको मैं खुदा बोलता हूं। यह है अल्लाह तआला, यह है इन्ना रब्बकुम अल्लाहु लजी खलक समावाती वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। अच्छा, अब सित्ता छह दिन। अब ये उसके बाद में जो है बात, अय्याम किसको बोलेंगे आप? कुरान से लीजिए, आप लुगतों पे मत जाइए, कुरान से लीजिए। कुरान में एक जगह यौम थाउजेंड एक साल, एक हजार साल का आया, एक जगह यौम पचास हजार साल का आया, बास जगह यौम हमारे दिन के बराबर आया। तो यौम का तर्जुमा होता है पीरियड। तो वी हैव क्रिएटेड दिस इन सिक्स पीरियड, सिक्स स्टेजेस। एक एक पीरियड, वो एक एक स्टेज होता है, एक एक पीरियड। तो वो जो छह स्टेजेस हैं, पहले जो है पूरा, देखिए अब थोड़ा सा समझिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आसानी है, जिन साइंस के नहीं है। यानी किसी भी चीज का सब में छोटा जो पार्टिकल रहता है उसको एटम बोलते हैं। वो एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ माइक्रोस्कोप से जो है मॉलिक्यूल्स दिखे हैं कई हजार टाइम जो है मैग्निफाई करे, तो बीच में न्यूक्लियस रहता है और उसके अतराफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब यहां बताया जाता है कि एक बहुत तेज पेंसिल लेके अगर आप एक नुक्ता डाले और ये बताए कि ये स्केल है, ये न्यूक्लियस है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आधा मील दूर रहेगा, कहीं हुसैन सागर के कट्टे के पास रहेगा पहला इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ये पूरों को स्क्वीज कर दिया आप, एक जगह ला दिए, तो यही ब्लैक होल होता हमारा, पूरे सितारे को जो है एक जगह ला। तो कायनात शुरू होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सब एक जगह मिले हुए थे। एक धमाका हुआ, हमारी जबान में क्या बोलेंगे, कुन फयकुन। तो कुन में पूरी डेस्टिनी थी कायनात की। तो अब ये कुन जब हुआ तो ये इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स अलग हुए, पहला स्टेज तो ये पूरे एक जगह थे, दूसरा स्टेज ये अलग हुए, तीसरा स्टेज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन बना, चौथा स्टेज कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन एक जगह जमा होने लगा सितारों की शक्ल में, पांचवा स्टेज जो है प्रोटो गैलेक्सीज बने, थोड़े छोटे छोटे गैलेक्सीज बनने लगे जिसका जिक्र करा मैं, और फिर उसके बाद में फाइनली गैलेक्सीज बने। अब एक एक गैलेक्सी में 200 टू 300 बिलियन स्टार्स हैं, एक एक गैलेक्सी में 200 टू 300 बिलियन स्टार्स हैं, और ऐसे 150 बिलियन गैलेक्सीज हैं जो अब तक डिस्कवर कर रहे हैं। तब जरा थोड़ा जरा रुकिए, रुकिए जो है सोचिए कि इसका पालने वाला, इसका बनाने वाला, इसका मेंटेन करने वाला, अरे हम अपने में खोए हुए हैं। शादी में बिरयानी बड़ी मजे की थी साहब, बोले क्या हुआ था? अरे सोच के देखो, गोश्त कहां से आया, बकरा कहां से आया, नमक कहां से आया, चावल कहां से आया, ये पूरी कायनात लगी हुई है उसमें, कभी सोचे खाते हुए आप? ये किताब है कुरान। तो फिर सित्तति अय्याम, ये छह पीरियड में बनाया, सुमस्तवा अललश, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल आयत। फिर उस वो अर्श पे अस्तवा हुआ। अब बाज लोगों ने कहा कि अर्श की तरफ तवज्जो किया, देखिए अल्लाह ताला की तवज्जो से पहले फिर कोई चीज रह ही नहीं सकती ना, अल्लाह ताला की तवज्जो बहुत जरूरी है। उसके छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए, जहन में चार मीनार रखिए, चार मीनार इमेजिन करिए, तसव्वुर कीजिए, एकदम ताजमहल इमेजिन कीजिए आप, चार मीनार गिर जाता ताजमहल आ जाता। तो तवज्जो जरूरी है किसी चीज के कायम रहने के लिए अल्लाह ताला के। तो इससे पहले तवज्जो नहीं थी तो फिर कायनात कैसा थी? अच्छा, बाज लोग बोले कि सवार हुआ उस पर, ही माउंटेड द थ्रोन। देखिए साहब, मैं ये कुर्सी मेरा वजन बर्दाश्त कर रही है, ये कुर्सी मेरे से ज्यादा बड़ी है। इधर अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं, इन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन मुहीता, वो हर चीज को घेरे हुए हुए, तो हर चीज को घेरे हुए, तो कुर्सी कैसा उसको घेर सकती है? तो हम फिर कुरान पे आएंगे अस्तवा के माने तय करने के लिए। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, सवाउन अलैहिम आ अंजर तो हम अम लम तुंजिर हम ला युमिनून। सवाउन का ये लफ्ज बुनियादी लफ्ज है, सीन वाव, ये सीन वाव अलीफ से तो बुराई का मतलब निकलता, सीन वाव ये जहां तक मुझे याद है, ये इसका मतलब होता है इक्वल, सवाउन अलैहिम, इनके लिए इक्वल है, आप इनको समझाओ या ना समझाओ ये ईमान नहीं लाएंगे। गफरा, उसने माफ किया। अस्तगफरा, गफरा उसने मगफिरत चाही। अस्तगफरा, उसने जो है उसको मगफिरत बख्शी, मगफिरत दी, मगफिरत मांगना, जैसा नमाज इस्तिखारा है, क्या है, अल्लाह ताला से खैर मांगना, उसको तमाशा बना दिया उसको। हदीस जो सही है, इस्तिखारे का मतलब यह है कि अल्लाह ताला से खैर मांगना। तो अस्तवा का मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम चाहना, मसावात चाहना, बैलेंस चाहना। अस्तवा का मतलब होगा कि बैलेंस चाहना। ये लोग जहां कुरान में इस्तेमाल हुआ, घोड़ों की सवारी के वास्ते ये लफ्ज आया है, घोड़े की पीठ पर जब आप बैठते तो सारा बैलेंस करते आप। कश्ती की सवारी के लिए ये लफ्ज आया है, कश्ती भी जो हिलने लगती तो थोड़ी देर के बाद आप जरा बैलेंस करते। तो फिर अल्लाह ताला ने अर्श पर, अर्श क्या है, अर्श ऐसा मालूम होता है कि द कैपिटल ऑफ द यूनिवर्स। कुरान ने इसको कैसा समझाया, एक अर्श तो ऊंची जगह के लिए कहा, एक मलेका बिल्किस का अर्श समझाया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पीरियड में, अर्श का लफ्ज आया। थ्रोन, थ्रोन से सेंट्रल कंट्रोल होता। हमारा थ्रोन कहां है, दिल्ली में है। जो भी फैसले होंगे हिंदुस्तान के, मेजर फैसले होंगे, वो दिल्ली से होंगे, महबूब नगर से नहीं होंगे, अर्श से होंगे, जहां पायतख्त जो है वहां से होंगे। तो ये पायतख्त से तवाजुन कायम किया, बैलेंस कायम किया। क्यों बैलेंस कायम किया, ये जो बिग बैंग हुआ था, ये तमाम जो फैलने लगे थे, तो ये इनमें तवाजुन ऐसा कायम किया कि ये अगर फैलते ही चले जा रहे हैं, ग्रेविटी से उसको रोका। तो ये फैलने का एक्सपेंसिव फोर्स और ग्रेविटी का पुलिंग फोर्स, ये दोनों में तवाजुन है। जिस दिन ये फोर्स टूट जाएगा, कियामत कायम हो जाएगी। ये बात आ रही है, कियामत का दिन बड़ा भारी होगा, सखल। ये जो वजन होता है, ग्रेविटी की वजह से वजन नहीं है, ग्रेविटी नहीं रही तो कुर्सी उंगली पर उठा के फेंक देते आप। तो कियामत के दिन मालूम होता है कि ग्रेविटी जो है इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगी। हम आसमान और जमीन को ऐसे लपेट देंगे जैसे लिखने का कागज, हम इसको फिर पैदा करेंगे जैसे हमने पहले पैदा किया था। ये वायदा है, हम पूरा करके रखेंगे। सूरह बनी इसराइल की 104 आयत है। तो अब बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला वही है जिन्होंने 7 लेवल्स बनाए आसमान के, इतने बड़े बड़े, 15 बिलियन ईयर पहले, और उनके ये 6 स्टेजेस में बना। उसके बाद में ये जो तवाजुन बिगड़ा था, वो सारी कायनात में उन्होंने तवाजुन कायम किया। फिर खामोश नहीं रहे, युदब्बिरुल अम्र, वो मामले की तदबीर वही करते हैं, इंतजाम वही करते हैं। ही मैनेजेस द शो, और किसी के हाथ में नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। मलायक जो है इबादुर रहमान है, अल्लाह ताला के गुलाम है। लोगों ने मलायका का मुकाम कुछ अजब बना दिया, इंसानों का मुकाम कुछ अजब। तो मुसलमान को जो कुरान से अल्लाह ताला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, देखिए एक बात है, जब तक अल्लाह ताला की बड़ाई दिलो दिमाग में नहीं बैठी, इबादत में मजा नहीं आएगा आपको। एक मैकेनिकल खड़े ना, अल्लाह अकबर, चलिए अभी नमाज हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, कितना बड़ा है, क्या बड़ा है। एक ऐसी तकरीर हुई थी, कोई साहब, उनका नाम भी मुझे याद है, अब्बास साहब थे, वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी में कुछ सेल्स वगैरह के मैनेजर थे। तो वो एक काफी दिन के बाद मुझे हैबिट्स पे मिले, मिलके बोले, साहब वो आपकी तकरीर सुन के गया था, मैं जोहर की नमाज पढ़ा, अल्लाह अकबर बोले तो पहली दफा मेरे को कांटे खड़े, रोंगटे खड़े रह गए, अल्लाह कितना बड़ा है भैया, थरथराते हुए हाथ बांधा मैं। वो ये कैसी हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु की हुई है, अजा होती तो आपका चेहरे का रंग बदल जाता। लोग पूछते आप क्यों इतना परेशान हो जाते, तो बोले तुझे मालूम है किसके सामने जाके खड़े रहना है। तो ये तबलीग का, ये कुरान पहुंचाने का एक जो असल मकसद है, अल्लाह ताला की बड़ाई हमारे दिलो दिमाग में बैठना, अपनी कमतरी, दूसरों की कमतरी, दूसरों का छोटापन दिलो दिमाग में बैठना, जब इबादत में मजा आएगा। आप अल्लाह ताला को पहचानते ही नहीं, इबादत में क्या मजा आएगा। हु इज गॉड, आई डोंट नो हिम, नऊजु बिल्लाह, ये हमारा एटीट्यूड है। बोलते नहीं तो हम कम अज कम हमारे बैकग्राउंड में वही है। देखिए कुरान भी पढ़ रहे हैं तो एक तसल्ली के लिए पढ़ रहे हैं, भाई हम तो रोज कुरान पढ़ते थे, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या इंसल्ट है ये, इंसल्ट है किताब की। अरे बच्चों का खत बाहर से आता तो 10-10 वक्त पढ़ते, भाई कुछ मंगाए तो नहीं, क्या लिखे, क्या करना है, है? ऐसी औलाद जो कई लोगों को लात मार के निकल गई, उसकी भी औलाद से ये मोहब्बत है। ये जो पाल रहा है हमको, उसकी जात को, उसकी सिफात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये कायनात उसने बनाई है, और फिर पूरा मामला वही असर करता है, दिन रात की हेर फेर है, बारिश कब होना। अगर बारिश नहीं होती, थोड़े दिन पहले जो जुलाई में जो बारिश हुई, अगर बारिश नहीं होती तो मर जाते थे अब तक हम लोग, पानी नहीं है कहीं। तो ये अल्लाह ताला का करम है, कौन है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश बारिश बरसाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करी, या वर्ल्ड बैंक वाले आके जो है बारिश बरसाए। सोचना है ये बात को कि पूरा मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, सारी कायनात का, और हम जैसे लोगों का, जानवरों का, तमाम चीजों का, वो बात आगे आएगी। आज जरा ज्यादा साइंस है इसमें। और फिर मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही, और फिर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कोई अल्लाह ताला के पास शिफात नहीं कर सकता। ये उन लोगों के पास था कि भाई बुत परस्ती कर रहे हैं, और वो जो भी उनके प्रीस्ट हैं उनके बड़ी एहतमाम कर रहे हैं। अब लोग पूछे कि भाई क्यों कर रहे हैं, तो बोले ये हमारी शिफात करेंगे, अल्लाह ताला के पास रेकमेंड करेंगे कि ये अल्लाह ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप जन्नत में डाल दीजिए। जैसा अल्लाह ताला को नहीं मालूम, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास भी आ गया। आ जाओ मियां, तुम हमारे पास आ जाओ, हम देख लेंगे शिफात है जी। आपको ही अपना ही देखने का है, आपका क्या हशर होता नहीं मालूम, इतों को खराब करे दूसरों को क्या देख लेंगे आप। तो यहां है, बगैर अल्लाह ताला की इजाजत के कोई शिफात नहीं कर सकता। जालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम फाअबुदूहू, ये तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है, लिहाजा इसकी गुलामी करो। क्या तकाजा है साबिर, अल्लाह करे ये आयत हमारी समझ में आ जाए। ये अल्लाह है तुम्हारा पालने वाला मालिक, लिहाजा इसी की गुलामी करो। अरब के सामने अब्द का जब लफ्ज आएगा, कोई अरब अगर है तो उन्हें उसको गुलामी समझेगा। हम अब्द का मतलब इबादत में ले लेते हैं, हम परस्तिश के जरूर आते माने, लेकिन ज्यादा गुलामी के माने में। तो ऐसे अल्लाह की गुलामी करो जो पूरा, दूसरों से क्या कोई कुछ कर ही नहीं सकता साहब। कसम खा के बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। बात आगे आ रही, ना नुकसान पहुंचा सकता ना फायदा पहुंचा सकता, तो क्यों इनके पीछे पड़े हो। अल्लाह से मांगो, नमाज हाजत है, नमाज इस्तिखारा है, नमाज जब भी तकलीफ होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने खड़े रहते, नमाज पढ़ते, अल्लाह ताला से मांगते। तो जो है फिर इसी की गुलामी करो, अफला तज़क करो, क्या तुम इसके बावजूद भी नसीहत हासिल नहीं करोगे। ये सब समझने के बाद इलैकुम मर्जिउकुम जमिया, और उसी के पास तुम सबको जमा होना है। ये भी बात अटल है, एक ही दरवाजा है, जाना यही से है, मरने के बाद उसी के पास जाके पूरा हिसाब किताब करवाना है, क्या कमाया क्या गमाया, वक्त कैसा सर्व किया, जवानी किसमें लुटाया, बुढ़ापे तो किसमें गया। तो मालूम हो रहा है कि 24 घंटे में से जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनका आधा घंटा अल्लाह के लिए जाता है, पांच पांच तीन तीन मिनट की नमाज। जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके 24 घंटे जो है गैर अल्लाह की चीजों में चले जा रहे हैं। मैं तो एक जगह तैश में आके बोला कि जितनी देर आप टीवी देखते हैं उतनी देर अगर अल्लाह ताला की इबादत कर ले तो इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। क्या मुकाम हो जाएगा। अब कोई साहब ऑफिस को आए, आंखा लाल थे, मैं बोला क्या साहब आपको तबियत ठीक नहीं। मैं बोले नहीं भाई, वो वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, 2:30 बजे सोया हूं। मैं बोले अजी तहज्जुद को कभी जिंदगी में नहीं उठे, ईशा नहीं पड़े, पांचों नमाजा मिस हो गए, वर्ल्ड कप देखने को 2:30 बजे तक जा गया। तब अल्लाह ताला की ये बड़ाई समझ में आने के बाद अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, साबदू तो उसी की गुलामी करो, तुम क्या नसीहत हासिल नहीं करते, इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, वहां हिसाब किताब पूरा देना पड़ेगा। वाद अल्लाह ही हक्का, ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चा वादा है। इन्नहु यब्दुल खल्का सुम्मा युईदुहु लियज़ियल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफरू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफरून। वही है जो खिलकत को की इब्तिदा करता है और फिर उसको दोहराता है। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा से पहले इंसान थे ही नहीं, तो इंसान की पैदाइश शुरू किया, भी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को पैदा किया। यह है, इसको बोलेंगे कि इन्नहु यब्दउ یبدو الخلق ثم یعیدو، پھر دہراتا ہے، پھر ان کے جو بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہو گئے، اب شادیاں ہوئے، میاں بیوی ملے، بچے پھیلتے گئے، اس وقت 6 بلین کا پاپولیشن، اس وقت دنیا کا پاپولیشن 6 بلین کا ہے، کتنے بلین مر گئے نہیں معلوم، کتنے بلین آنے والے ہیں، صرف یعنی ابتدا کیا آدم علیہ السلام، بی بی ہوا سے پھیلایا وہی، آپ تو نہیں پھیلائے، حقیقت یہ ہے کہ آپ روک بھی نہیں سکتے ہو، شیطان سمجھا رہا آپ روک رہے ہیں، بول کے نہیں، اس کو آنے کا ہی نہیں ہے، اس واسطے یہ سب ہو رہا ہے، بلا وجہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، آنے والا آ کے رہتا، ایسے کئی قصے سننے میں آئے. اچھا پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ کیوں کیوں ابتدا کیا، کیوں پھیل ریپیٹ کرتا ہے، ریپروڈیوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے، اور وہ لوگ جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کا، کتابوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، حساب کتاب کا، جو انکار کرے ان کے لیے حمیم، اسی سے حمام کا لفظ نکلا ہے، جا گرم پانی نہاتے آپ، تو ان کے لیے پینے کے لیے شراب، پینے کے لیے بولتے، کسی بھی ڈرنک کو شراب بولتے ہیں. ایک بیچارے، اللہ معاف کرے ان کو، مجھ سے بحث کر رہے تھے، آپ قرآن میں بتا دیجئے کہ شراب حرام ہے، اب آپ اردو میں شراب بول رہے ہیں، اس کو وہ خمر کا لفظ آیا ہے، وہ خے میم رے کا لفظ آیا ہے شراب کے لیے، ہم جس کو وائن جس کو بولتے ہیں، تو عربی میں شراب کا مطلب کوئی بھی پینے کی چیز. تو دو وقت میں ان کو کھولتا ہوا، آگ ہی آگ ہے، آگ کا ہی معاملہ ہے، تو کھولتا ہوا پانی ان کو پینے دیا جائے گا، اور ان کو تکلیف دے عذاب ہوگا، عذاب العلیم. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے کتابوں کو، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات کا جو قصہ ہم سن چکے ہیں، کائے کے لیے پیدا کیا، تاکہ امتحان لے، کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالے، کچھ لوگوں کو دوزخ میں ڈالے. یہی آیت ابھی ہم جو تفصیل میں پڑھے، سورہ آراف کی، سورہ ہود کی 7ویں آیت آ رہی ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم من احسن عملا، کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو، یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، جبکہ اس کا عرش جو ہے پانی پہ تھا، یعنی وہ تھا، اور تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر سورہ ملک، سورہ دہر میں آیا کہ ہم نے زندگی، موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو آزمائیں، ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. پھر آیا کہ ہم نے نطفہ امشاج، مرد اور عورت کے نطفے سے تم کو بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی کا مقصد آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پیدائش کو دہراتا ہے، کس کے لیے؟ کہ بدلہ دے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کو جنت دے، جو ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کرے، گناہ میں مبتلا رہے، ان کو دوزخ میں ڈالے. مقصد زندگی کا ہمارے یہ ہے، یہ مقصد ذہن میں رہنا ہے. اکثر بعض لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم صاحب میرے سے پوچھے تھے، صاحب واٹ از دا پرپز آف لائف اکارڈنگ ٹو اسلام. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی وہ پہلے جنم میں کچھ گڑبڑ کرے تھے، دوسرے جنم میں سزا ہو رہی، نئے جو اچھے تھے ان کو بڑا اچھا رکھے. مطلب کیا گناہ کرے تھے صاحب؟ نہیں نہیں معلوم صاحب. بولے کیا بھلائی کرے تھے؟ نہیں معلوم. مطلب پھر ریوارڈ اور پنشمنٹ ایسی چیز کا جو معلوم ہی نہیں، کیا کیا واسطے ہو رہا. بولے آپ جا کے گھر کو بچے کو بھڑا بھڑ مار رہے ہیں. انہیں بولا دیوانے ہو گئے کیا بابا؟ اچھے خاصے تھے گئے جب. کائی کو مار رہے ہیں؟ چپ مار رہا ہوں میں. بولے تو وجہ بتاؤ نا بھائی، کیا کیا واسطے مار رہے ہیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ ہم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں آزماتا ہے، جب آرام پہنچتا ہے تو آرام میں آزماتا ہے. آزمائش دو ہی قسم کی ہوتی ہے، دے کے آزماتا، لے کے آزماتا. پوری زندگی یہی ہے. صحت دے کے آزمایا، بیماری دے کے آزمایا، توفیق دے کے آزمایا، توفیق کھینچ کے آزمایا. یہ بھی ہے، میں تجھے گھر میں پیدا کیا مسلمان ہو کے تیری یہ حشر ہے، جا تو کافروں کی زندگی گزار لے. میجورٹی ہماری وہی حشر ہوئی، جب آگے بات انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ ہماری زندگی جو ہے امتحان ہے، اور ہم اس کو امتحان سمجھنا، یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال میں بچے جو ہے امتحان دینے کے واسطے آتے، ٹیبل نہ ملا کے ٹیبل ٹینس کھیلنے کے واسطے نہیں آتے، جیسا ہم لوگ کر رہے ہیں اتنے بڑے ہو کے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، ہمارے متعلقین کو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، یہ بھی پھر سائنس آ گئی، اور وہی ہے جس نے सूरज को रोशनी और गर्मी का जरिया बनाया, जिया, फिर कुरान से साबित करेंगे हम। मैं लुगत पे ज्यादा नहीं जाता, कुरान पे जाता हूं। सूरह बकरा की 17 आयत है, उसमें एक मिसाल दी गई, काफिरों की मिसाल दी गई कि किसी ने आग रोशन की, वहां जिया का डेरिवेटिव आया, किसी ने आग रोशन की, तो जो लोग रास्ता पाए पा लिए, जो लोग जो अल्लाह ताला ने उनका नूर सल्ब कर लिया, वो तो अब आग में क्या होता, आग में दो ही चीजें रहती, रोशनी और गर्मी, जिसको अरबी में आप बोलेंगे नूर और हुर, नूर और नार भी बोलिए। आग जो जलाते हैं हम कब लकड़ियां वो करके जो पकवान के वास्ते जलाते हैं, तो उसमें क्या होता, वो आग में नजदीक जाके देखिए आप, नूर भी रहता, रोशनी भी रहती और हीट भी रहती। अब जिसका नूर खींच लिया तो खाली गर्मी रह जाती है, दोजख का जो मामला है। तो अब यहां सूरज के बारे में कहा कि वो जाला शम्स ज़िया, यानी सूरज को रोशनी और गर्मी का जरिया बनाया, ये बड़ी खास बात है सर। अब यहां देखिए आप, चांद के लिए नूर का लफ्ज आया, इंशाल्लाह इसके बाद वही आ रहा है। तो अब ये ज़िया, ये सूरज का क्या मामला है, ये 14 लाख किलोमीटर का गोला है। थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा बार डालना जहन पे। आपके घर की कीमत अगर 42 करोड़ आ गई तो फौरन लोगों से पूछते मियां 1 करोड़ में कितने लाख होते। तो इस तरीके से यहां भी ये जरा कीमत पूछ लेना है। नहीं कोई साहब मेरे किसी दर्स में मेरे पे एतराज करे, बोलते वो मिलियन बिलियन बोलते, एक लफ्ज समझ में नहीं आता। उनके घर की 4.2 मिलियन कीमत आई उनकी। तो फोन करके पूछे सर ये 4.2 मिलियन आई, तो बोला एक एक 10-10 हजार का 1 मिलियन होता, 42 लाख की कीमत आई। बोले बोला हो गया जरा ऐसे, बोला आप वो दर्श में नहीं पूछे, आप 15 बिलियन से कायनात है। बोले तो जब बिलियन नहीं पूछे, अब कीमत आई तो मिलियन बिलियन पूछ रहे हैं आप। तो अब हम ये समझना है कि 14 लाख किलोमीटर का गोला है। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन जल रहा है, जरा एक एक चीज पे गौर कीजिए आप। एक ही यूनिट बता रहा हूं मैं कायनात का, कायनात तो हम गौर कर चुके हैं। इसमें हाइड्रोजन जल रहा है, कैसा हाइड्रोजन जल रहा है कि 5 बिलियन केजी हाइड्रोजन पर सेकेंड जल रहा है। अरे मेरे निकाले हुए नहीं है, पूरा साइंटिफिक लिटरेचर है, हो सकता है मेरी वो किताब यूनिवर्सिटी थ्रू द कुरान या साइंटिफिक फैक्ट्स इन द कुरान अगर देखे तो उसमें आपको रेफरेंसेस भी मिल जाए। तो यहां जो है यानी 5 बिलियन केजी हाइड्रोजन हर सेकेंड में जल रहा है, और ये 15 बिलियन ईयर से जल रहा है। आपका गैस का सिलेंडर बहुत मुश्किल से 15-20 दिन चलता, फैमिली बड़ी रही तो 8-8 दिन में बदलना पड़ता। तो ये गैस का सिलेंडर है, हाइड्रोजन की गैस का सिलेंडर है। आपकी गैस जो है वो लोहे के सिलेंडर में है, ये गैस को कोई सिलेंडर आउटर कवर नहीं है, ग्रेविटी खुद इसका कंटेनर है, ग्रेविटी उसको रोक के रखी है, जाने नहीं दे रही है। फिर आपका डिस्टेंस 150 मिलियन ईयर्स दूर है, सूरज आपसे 150 मिलियन ईयर्स दूर है। अब भी पसीना आ रहा है, सूरज की गर्मी आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वह जाला शम्स ज़िया। अच्छा, अब इसको खलक नहीं बोला, जाला बोला, क्योंकि खिलकत तो हो गई। अब बनाया इसको, रोशनी बनाया, जो चीज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हम जो देखे वो बन चुके थे, अब उससे जाला उसको बनाया, रोशनी बनाया उसको। वल खमरा नूरा, और चांद को नूर बनाया। नूर क्या है, अब चलिए फिर कुरान से समझने की कोशिश करेंगे, साइंस पे बाद में आएंगे। वह शमसी व जुहाहा वल खमरी इज़ा तलाहा, सूरज की खसम उसकी रोशनी की खसम, चांद की खसम जब सूरज की रोशनी की तिलावत करती है, के लाम व लफ्ज तिलावत का मादा है, चांद की खसम जब सूरज को पढ़ता है, व्हेन इट रीड्स द क्या बोलेंगे आप सन। अब देखिए तिलावत पे गौर कीजिए आप, तिलावत में क्या हो रहा है, ये हम रोशनी आ रही है, रोशनी आके रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्शन से हम देख रहे हैं। अगर रोशनी नहीं रही, सूरज नहीं रहा, तो चांद रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अगर चांद रिफ्लेक्ट नहीं करा तो नीचे तक रोशनी नहीं आएगी, लाइट नहीं रही तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तिलावत नहीं कर सकूंगा, और ये पेज काले पेज पे काला लिखा हुआ रहा, रिफ्लेक्शन नहीं रहा तो भी मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ताला मैकेनिज्म समझा दिए, चांदनी रात का, चांदनी का मैकेनिज्म समझा दिए कि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम तिलावत के लफ्ज को पीछे आता है फॉलो करता है के सेंस में कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज उस वक्त नहीं थी, हम वैसा कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में अब ये उसके लिए लफ्ज नूर आया। देखिए, चांदनी रात में अगर आप बैठे तो होता है कि खाली रोशनी दिखती, गर्मी नहीं दिखती, सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, खाली रोशनी, तो सिर्फ रोशनी नूर, और हर जगह चांद के लिए नूर आया, सूरज के लिए जिया या जुहा, ये लफ्ज आया। अच्छा, फिर उसके बाद में ये बोला कि वह खद्दर हो मनाजिला ली तालुम अदद सिनेना वल हिसाब, और फिर उसके लिए मंजिलें बना दी चांद की, पहली का चांद, दूसरी का फुल मून, फिर वापस होता जाता, पूरे मंजिलें बना दी, काय के लिए, ताकि तुम बरसों की गिनती करो, अपना हिसाब रखो। तो मालूम हुआ कि सूरज अपने दूसरे मकासिद के अलावा इट इज एक्टिंग एज ए क्लॉक। मैं हिमालयन रेंजेस में रहा था काफी दिन, तो अब वहां के जो किसान थे, अगर उनसे टाइम पूछे तो सूरज देख के बोलते हैं 4:30 हुए होंगे साहब, टाइम देख के, सूरज देख के बोलते हैं उनका, उनका उनका उनकी घड़ी है सूरज, और चांद को आप देख के, कैलेंडर है, कैलेंडर लटका दिया अल्लाह ताला, घड़ी भी लटका दिए, कैलेंडर भी लटका दिए, ये भी पर्पज हो गया आपका। अच्छा, फिर दूसरी चीज एक बड़ी खास बात है, ये जो एक्लिप्स होता, लूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स, तो कुछ ऐसी जबरदस्त चीज है कि सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है। चांद का डायमीटर 3500 किलोमीटर है और सूरज का डायमीटर 1400000 किलोमीटर है, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 35, 35, 70, 70, 70, 140,000, तो 400 टाइम्स सूरज जो है चांद से 400 टाइम्स बड़ा है और जमीन के लिहाज से 400 टाइम्स दूर है। तो चांद ग्रहण जब होता है तो कंप्लीट एक्लिप्स होता है, कंप्लीट ढाप लेता है, इतना नपा तुला हुआ है। फिर अब ये जो मेघदार की बात हो रही है, आज का सनराइज 6:02 पर, सनसेट 6:33 पर, ये 28 अगस्त एनी ईयर आप देखिए सनराइज और सनसेट इसी पीरियड में है। लूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स किसी भी कैलेंडर में देख लिए पहले से बता दिए जाते हैं, देर नहीं होती, बराबर वही वक्त पे होता। यह है अल्लाह आपका, यह है आपका रब पालने वाला, यह तमाम चीजें कर रहा है। मा खलक अल्लाह जालिका इल्ला बिल हक, और अल्लाह ताला ने इसको नहीं पैदा किया मगर हक के साथ, यानी देखिए हक के दो माने होते, इट्स नॉट एन इल्यूजन, इट्स ए रियलिटी। जैसा पहले बोलते थे बचपने में, वो देखो चांद में बुड्ढी बैठ के वो चरखा काट रही बोल के बोलते, अब हम लोग वही समझते थे। फिर एक कॉन्सेप्ट था कि वो चैरियट है, उसको लेके भागता कोई, वो ऐसा था, अब वो जब मून पे लैंड करे तो मालूम हुआ कि तो सॉलिड बॉडी है, बहुत करीब से पिक्चर्स भी लिए हैं, सब आ गए, सॉलिड बॉडी है। तो यहाँ और ये हम एक मकसद से बनाए, मकसद क्या है, ये तमाम चीजों के बनाने का मकसद क्या है, ताकि हम तुमको आजमाएं कि तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अब ये बड़ी खास पीस है, युफस्सिलुल आयाती लिकौमी यालमून, हम आयतों को ऐसी कौम के लिए खोल खोल के समझाते हैं जो इल्म रखते हैं। अब तक आप जो सुने ये एस्ट्रोनॉमी का इल्म था, ये इल्म नहीं रखे तो ये आयत कैसा समझेंगे आप, जरा बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर मैं ये नहीं पढ़ा हुआ रहता, मेरे सब्जेक्ट्स नहीं रहते, मैं ये नहीं पढ़ा हुआ रहता, तो इन आयतों को इतनी देर से कैसा समझा सकता था मैं, कैसा समझ सकता था मैं। तो मालूम हुआ कि कुरान समझने के लिए तमाम उलूम को समझना पड़ेगा, बगैर इकोनॉमिक्स पढ़े के फतवे दे दिए, बगैर पॉलिटिकल साइंस पढ़े के फतवे दे दिए, बगैर लॉ पढ़े के जो है लीगल फतवे हो गए, तमाशा बन गया हमारा पारे, सारी दुनिया में तमाशा बन गया। ये मैं मेरे से नहीं बोल रहा हूं, युफस्सिलुल आयाती लिकौमी यालमून, हम आयात खोल खोल के समझाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। इल्म ही नहीं रखते, अरे अपनी ला इल्मी को मानो, سمجھو کہ کتنا نقصان اسلام کے انسٹیٹیوٹ کو پہنچ رہا ہے ایسے چیزوں سے. قرآن سمجھو, یہ علم ہوگا تو قرآن سمجھیں گے نا بھائی. بھائی اکنامکس معلوم ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ انشورنس کیا چیز ہے, ڈیبنچرز کیا چیز ہے, شیئرز کیا چیز ہے. پولیٹیکل سائنس معلوم ہوا تو معلوم ہوگا کہ مونارکی کیا چیز ہے, ڈیموکریسی کیا چیز ہے, ڈکٹیٹرشپ کیا چیز ہے, کیپیٹلزم کیا چیز ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو سائنس معلوم رہا تو یہ پڑھیں گا, لا پڑھے ہوئے ہیں تو معلوم ہوگا. اب ایک غیر مسلم صاحب میں سے بولے, صاحب ماں کی بڑی عزت ہے ہمارے پاس. بولے ہمارے پاس بھی ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بولے نہیں مگر آپ کے انہیریٹنس میں اماں کو 1/8 ملتا نا صاحب. بولے بچوں کو جو ہے آدھا آدھا مل جاتا ہے, اتنا ملتا اماں کو. بولا دیکھو صاحب ہمارا جو انہیریٹنس لا ہے اس کا ایک اسکیم ہے, مرد کو اور جوان آدمی کو زیادہ حصہ دیا کیونکہ وہ ارننگ ممبر رہتا, عورت کو اور بوڑھوں کو کم حصہ دیا کیونکہ اولاد رہتی ان کا فرض ان کو پالنے کا رہتا. ارے 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 ایسا ہے کیا؟ تو آپ غور کریں تو جواب دیں گے نا, نہیں تو آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. تو ہماری ٹریجڈی اس وقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر یہ علوم حاصل کرنے کے سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, اور ہم جیسے کو اللہ تعالیٰ اگر کھڑا کر دیا ہے بولنے کے لیے تو کئی فتوے دے دیتے. ایک صاحب کا لیٹر آیا تھا, میری پہلی کتاب یا دوسری کتاب چھپی تھی ایلیمنٹس آف نماز, اس کے کئی ایڈیشنز نکلے, تو میرے کو خط گن فاؤنڈری میں تھا, خط آیا تھا کہ انگریزی میں مت لکھا کیجئے, اس پہ کفر کا فتویٰ ہو سکتا ہے. جو دارالعلوم دیوبند کے کچھ علماء تھے وہ کوئی صاحب لکھے تھے تو ان کو کفر کا فتویٰ دے ہی دیے تھے, کوئی بیچ میں آ کے روک دیے تھے. اب امریکہ میں 35,000 جو امریکنز اسلام قبول کریں, اللہ معاف کرے کافرہ ہیں وہ, کائی کو بولے تو انگلش میں قبول کرے. آپ سوچ کے دیکھیے ہمارا مزاج اس وقت. میرے جو رشتے دار اور جان پہچان والے ویسٹ میں باہر ہیں ان کی باتیں سن کے رونا آتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس اور وہاں کیا ہو رہا ہے ویسٹ میں, کیا زبردست موومنٹ چل رہا ہے. ایک اسلامک اویئرنیس ویک ہوا نیوزی لینڈ میں, تمام جوان بچوں کو جمع کیے, دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کرے. ایک بچہ تھرو آؤٹ وضو کر رہا, ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھرو آؤٹ, لوگ آ کے پوچھے تو بتایا گیا کہ بھئی دیکھیں یہ ایسی پاکی حاصل کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے رہتے, یہ نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ برٹن میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہو رہا ہے. میں آپ سے پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک نیوزی لینڈ کی کنورٹ عورت, وہ چاہ رہی ہے کہ عربی سیکھے, تو کوئی بولے بھئی یہ ترجمہ ہے, تو بولے نہیں, ٹرانسلیشن از دا ورژن آف دا ٹرانسلیٹر. آئی وانٹ ٹو ریڈ دا قرآن ان دا اوریجنل عربک as I have read the Torah and Injil in original languages. کیا جذبہ ہے! گالیاں نکلتے صاحب, اللہ معاف کرے. ہم میں کوئی ہے جو آج تک یہ سمجھا کہ میں قرآن عربی میں سمجھوں, اور عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا تو پھر ترجمہ نہیں لگتا, آنکھ کو نہیں لگتا ترجمہ. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اردو کے لیے جان دے دیے ہم, ڈیرے ڈال کے بھوک ہڑتال کرے ہم, عربی کے لیے کچھ بھی نہیں کرے. میں بچپن میں فارسی پڑھا ہوں. میں پولیس ایکشن سے پہلے مسلمان بچوں کو فارسی اور غیر مسلم بچوں کو تیلگو پڑھاتے تھے, عربی نہیں پڑھائے. ہماری کورٹ لینگویج پرشین تھی, عربک نہیں تھی. یہ ہو گیا, اللہ معاف کرے ان کو, ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ یو شوڈ تھنک واٹ آئی شوڈ ڈو, مجھے کیا کرنا ہے. ہمارا یہ ایسے اجتماع سن کے جشمے میں آ کے وہ بیوی کو لتاڑ دیتے, گھر کو جا کے بچوں کو لتاڑ, تم نماز نہیں پڑھتے ہو, تو بچہ پلٹ کے پوچھا آپ کون سا پڑھتے جو میرے کو بول رہے ہیں. تو اس وقت ہمارا دیکھیے, آپ ایک سیدھے ہوں گے تو پورا گھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ آزما کے دیکھیں, پہلے اپنے پہ کانسنٹریٹ کیجئے, میں کیا کر رہا ہوں اسلام کے لیے, میں اپنے آپ کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو یہاں یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ آیات نا تفصیل سے سمجھاتا ہے, انا فی اختلاف اللیل و نہار وما خلق اللہ فی سماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آنے جانے میں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے, ایسی قوم کے لیے جو تقویٰ رکھتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وجود اور قدرت کی نشانی ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنا, گناہوں سے رکنا اور نیک عمل کرنا. یہاں کیا بولے؟ لقومی یعلمون, علم رکھنے والی قوم, علم جب آ جائے گا تو تقویٰ خود ہی آ جائے گا. میں قرآن کا علم ہی نہیں ہے کس سے ڈرنا کس سے نہیں ڈرنا. میں آپ سے بار بار بول چکا ہوں کہ ایک صاحب مجھ سے بحث کرے, رمی جوا نہیں ہوتا صاحب, وہ پریل جوا ہوتا, بولے عقل لڑاتے اس میں. بولے بولا واہ واہ, اب کیا بولیں گے آپ؟ بولے ہم ریسز کو کیا ریسز کھیلنے جاتے, سرکل کے واسطے جاتے, وہاں ہمارے بزنس کمپینین آتے بول کے ہم جاتے. بولے تو ایسے آرگیومنٹس کو کیا بولیں گے آپ؟ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو رات اور دن ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے وہ تقویٰ رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے. اب یہاں دیکھیے, یہ زمین جو ہے یہ 13,000 کلومیٹر, سورج تو 14 لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے, زمین چھوٹی ہے, 13,000 کلومیٹر کا گولا ہے. یہ 1,600 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے ایوری آور, 1,600, تھوڑی سی بات چیز ہے. جو کارز چلاتے سکوٹرز چلاتے آج کل یہ روڈ پہ 40 کلومیٹر کے اوپر جا سکتے ہوئے شہر کے, یہاں 1,600 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ زمین اس وقت گھوم رہی. کدھر سے گھوم رہی؟ ایسٹ ٹو ویسٹ گھوم رہی, سوری ویسٹ ٹو ایسٹ گھوم رہی, ویسٹ ٹو ایسٹ گھوم رہی ہے, گھوم رہی ہے زمین. پھر آپ کو فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اب آپ بولیں گے کیا جھوٹ بول رہے ہیں, دوپہر کے وقت دن کے وقت کھلی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ میجر کیا ہوا ہے. پھر یہی نہیں, پھر اپنے دائرے میں 66,000 miles per hour گھوم رہی سورج کے اطراف, پھر سورج کے ساتھ گیلیکسی میں 720,000 miles per hour کی رفتار سے گھوم رہی ہے, پھر 1,50,000 kilometers per second کے رفتار سے جو ہے ہم پھیلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کہاں اسپیڈ کدھر معلوم ہو رہی؟ اچھا بیٹھے ہوئے مضبوط, دھکا نہیں لگ رہا, کیا ہے مذاق کے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تمام میجرڈ چیزیں ہیں, کیا قدرت ہے خدا کی؟ تو پھر یہی بول رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا تقویٰ رکھنے والوں کے لیے ان کی نشانی ہے. اب یہ ساری کائنات پہ آپ غور کر چکے ہیں, چاند سورج گیلیکسی ستارے وغیرہ, پھر پہاڑ سمندر جھاڑ جانور انسان, یہ تمام چیزوں کو دیکھیں. پھر اس سے پہلے بات آئی ہے سائنس کی, بات ہی آئی ہے تو تھوڑی اس پہ بات اینڈ ہوتی سائنس کی, کہ بتایا کہ بھئی ایک ایٹم میں ایک نیوکلیس رہتا, اس کے اطراف پروٹونز رہتے, اس کے اطراف الیکٹرونز گھومتے. ہائیڈروجن میں ایک پروٹون ایک الیکٹران رہتا, مختلف ایلیمنٹس میں زیادہ پروٹونز اور نیوٹرونز رہتے, مگر بیسیکلی وہی چیزیں رہتے. اب سوڈیم اور کلورین کے دو ایٹمز آ کے مل گئے, سوڈیم کلورائڈ نمک کا مالیکیول بن گیا, زبان پہ چکھتے ہی کھارا پن آ گیا. یہ ٹیسٹ کس نے دیا؟ سوڈیم اور کلورائڈ کا ایک ایک ایٹم ملا, سوڈیم کلورائڈ بن گیا, زبان پہ لگتے ٹیسٹ آ گیا کھارا پن. ہائیڈروجن اور کاربن ملے ایک پرٹیکولر طریقے سے ملے, شوگر بن گئی, زبان پہ رکھے مٹھاس آ گئی. ہائیڈروجن اور کاربن کوئی اور طریقے سے ملے پیٹرول بن گیا, پیٹرول کی بو آنے لگی, پیٹرول کی ناک سینسیٹیو ہے اس کے لیے سونگنے لگی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. پیٹرول کھارا کیوں نہیں ہے؟ کھانے میں آپ نمک کے بجائے پیٹرول ڈال کے کیوں نہیں پکا سکتے؟ اب ایک صاحب کھڑے رہے غصے میں آ کے, بھائی پیٹرول ڈال کے پکاؤں گا, پکاؤ دیکھو پکتا کیا کھانا. آپ ڈال کے ادھر پلٹے تک پیٹرول اڑ جاتا, پیٹرول از ناٹ مینٹ فار دیٹ. پھر جو کوالٹیز ہیں, لیٹنٹ ہیٹ آف واٹر, لیٹنٹ ہیٹ آف پیٹرول, پوری سائنس پڑھنا پڑے گا. سائنس کس کی ہے؟ یہ پوری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہم کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. پھر وہی مذاق ایک جوک سنانا پڑے گا کہ ایک سائنٹسٹ صاحب اللہ تعالیٰ سے بحث میں پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اچھا تو کیا بتایا, کیا بنایا تو انسان کی حیثیت سے؟ بولا وہ ریڈیو بنایا, ٹی وی بنایا, وہ بنایا, واشنگ مشین بنایا, وہ بنایا, تھک کے گر گیا. تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے بولے کہتے, اب وہ بولا کہ آپ بولو, لیٹے لیٹے بولا آپ بولو کیا بنایا. بولے تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے بولے میں تیرے کو بنایا. تو بات سمجھنے کی ہے, لا بلانگس ٹو گاڈ اللہ تعالیٰ, دا مٹیریل بلانگس ٹو گاڈ اللہ تعالیٰ. یہاں یہی دو چیزیں تو استعمال ہو رہے ہیں نا بھائی, مادہ استعمال ہو رہا کسی قانون کے ذریعے, وہ مادہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, اور وہ قانون جس کے تحت آپ یہ بنائے ہیں آپ سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ قانون نہیں بنائے, نیوٹنز لا آف گریویٹیشن بول دیا, گریویٹیشن کو نیوٹن ڈسکور کرا, نیوٹن لا آف گریویٹیشن نہیں بنایا نیوٹن. हाँ उसको सर पर बिठा लिया, न्यूटन को, आइंस्टाइन को, इनको, इनसे डिस्कवर कराया गया। तो बात यह समझना है कि हर चीज में जो है निशानी है अल्लाह ताला के वजूद में। और ये देखिए, मैं आज एक रुकू पे खत्म करता हूं, ये एक तीन चार आयात हैं, मैं बल्कि और कम करूंगा सोचा था। इन लदीना ला यरजूना लिखाना, ये भी बड़ी खास आयत है, फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि यहां चार क्वालिटीज बताए गए हैं दोजखियों के, दोजखियों के चार क्वालिटीज बताए गए हैं। गौर कीजिए इसमें से हम में कितने हैं। मैं हिसाब डाला तो चार में से तीन हमारे में है। पहली क्वालिटी क्या है, इन लदीना ला यरजूना लिखाना, बेशक वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह की वजह से ये क्वालिटी नहीं है, हमको आखिरत पे ईमान है, हम अल्लाह ताला के पास जाना है, हिसाब किताब देना है, ये ईमान है, ये क्वालिटी नहीं है। वह रजू बिल हयाति दुनिया, और जिनको दुनिया की जिंदगी पसंद है, मुसलमानों से ज्यादा किसी कौम को पसंद नहीं होंगे, तड़प जाते हमारे खाने देख के। मैं मेरी बच्ची की शादी का रुखा कोई क्रिश्चियन को देने गया था, तो बोले मैडम, बोले आई विल मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड इट, योर गर्ल्स हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड, यानी व्हाट ए ग्लैमर, मुस्लिम मैरिजेस व्हाट ग्लैमरस दे आर, क्या है साहब तमाशा, खाली स्टेज का पर्दा जो है 5,000 का 10,000 का पर्दा पड़ जा रहा है, फूलों की लड़ी एक एक फूल 20-20 रुपए का आ रहा है, गरीबा भूखे मर रहे हैं, शादी छोड़ी उनको खाने के लिए खाना नहीं है, इस किस्म का जो है वेस्ट हो रहा है। तो यहां क्या बोल रहे हैं, दूसरी क्वालिटी वो रजू बिल हयाती दुनिया, जिसको दुनिया की जिंदगी पसंद है। आज की अहादीस भी यही मजमून पे है, जरा गौर कीजिए, अपना जायजा लीजिए, ऐसे दरसों में बैठ के जायजा लेना कि हमारी ये कैफियत है कि हमको दुनिया की जिंदगी पसंद है, तो जवाब ये आएगा, हो ये तो है, दुनिया की जिंदगी तो पसंद है, तो जरा ये चेक करना है, इसको निकालना है। वत्म अन्नु बिहा, और फिर ये दुनिया की जिंदगी से इत्मीनान में है। अब हमारी उम्र के लोग आए, छोटे बच्चे आए, देखो मियां हम अल्लाह का फजल से वजीफा मिलता, बीमार पड़े तो रिएम्बर्समेंट हो जाता, बच्चे सेटल्ड हैं माशाल्लाह, चिचा आखिरत फिक्र ही नहीं, जाने ही नहीं है तो फिक्र क्या करेंगे, आखिरत का तो सवाल ही नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हुए तो आखिरत याद आती। तो मेरे को अल्लाह के फजल से बहुत, अल्लाह के फजल से बहुत तजुर्बे हुए हैं। एक वक्त मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा था इमरजेंसी में, तो मैं रास्ते में ये सोचा कि या अल्लाह क्या लेके आ रहा हूं मैं, क्या लेके आ रहा हूं मैं, नमाजें पढ़ रहे नमाजों के माने नहीं मालूम, दुआ मांग रहे दुआ के माने नहीं मालूम, इतनी गलत कौम है हम लोग। वो न्यूजीलैंड में कोई एक बाहर के स्पीकर आए थे, बोलते एक तो खुली तकरीर थी उनकी, ये इस्लामिक अवेयरनेस वीक में खुली तकरीर थी, एक सिर्फ मुसलमानों की थी, तो पहले पूछ लिए, बोलते एनी नॉन मुस्लिम इन द ऑडियंस, तो लोग बोले नहीं, तो वो जो मेरे मुझे इन्फॉर्म करे बोले कि इतना लथाड़े हैं, इतना लथाड़े हैं कि पूरी ऑडियंस रो दी कि तुम लोगों का क्या हाल है, तुम किस लिए यहां भेजे गए हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, बोला उनको हिंदुस्तान भेजाओ, मारो बोलो, लकड़ियां लेके हमको मारो बोलो सीधे रास्ते पे लाने के लिए, हम इतने भटके हुए। तो तीसरी क्वालिटी क्या है कि वो दुनिया की जिंदगी से मुतमईन है। अच्छा, अल्लाह का नाम ले लेते, अल्लाह का फजल है साहब माशाल्लाह, अच्छी तनख्वाह है, बीवी बच्चे सब सेटल है, बस आखिरत का कहीं जिक्र ही नहीं है। जैसा एक साहब, मैं आपसे बोला था कहीं बाहर मिले थे, तो बोले साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पंजाबी आदमी है, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने नमाज शुरू की, कोई फर्क नहीं हुआ, मैंने नमाज छोड़ दी। बोले आप कुरान ही नहीं पढ़े, हदीस नहीं पढ़े, आपको नमाज की वैल्यू नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आजमाइश हुई, उनके भी दो दांत टूटे थे जंगे उहद में, कई साहबा शहीद हुए, कई जख्मी हुए, आपको मालूम ही नहीं कि ये आजमाइश है चीजों का, ये मामला है। फिर चौथी क्वालिटी, वल्लज़ीना हुम आयातिना गाफिलून, और जो हमारी आयात से गाफिल हैं। अब ये गफलत के दो तीन माने आते, एक गफलत के माने आते लापरवाही करना, एक आता ला इल्मी करना, ला इल्मी, तो हमारी आयतों से गाफिल है, ये दूसरी, ये भी लग जाता, टू आउट ऑफ फोर हो जाते हमारे, हमारी आए तो लापरवाही भी करते, अमल नहीं कर, पढ़ेंगे तो अमल करेंगे ना। और लाइल्मी भी है, पढ़े ही नहीं तो कुरान में मालूम है क्या है। अभी आपको मिसाल दिया, बोले हम इतने बड़े बूढ़े हजरत बोले के जो है कहाँ है हजरत कुरान में, बोले 50 साल से पढ़ रहा हूं मैं, आज तक ये आयत मेरी नजर से नहीं गुजरी। और बच्चा पढ़ के सुना दिया तो जो है शर्मिंदा हो गए। तो हमारा जो तिलावत कुरान है ये मकसद क्या है सब, ये तो इसकी जरूरत नहीं रहना चाहिए हमको। हम खुद इतनी मेहनत करना कुरान पे कि जो है दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोले कि ये चार क्वालिटीज में है, उलाई का मावा हुम नारु बिमा कानु यक्सिबून, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना आग है उनकी कमाई की वजह से। कमाई किसको बोलते हैं आप? डेलिबरेटली, भाई मैं दफ्तर गया, काम करा, मेरे को पहली को तनख्वाह मिली, मेरा वहां अपॉइंटमेंट ही नहीं है, मैं जाके वापस आया तो कमाई कहां से मिलेंगे? या मंगले पे बैठे तो भीख बोलेंगे, उसको कमाई नहीं बोलेंगे। कमाई डेलिबरेटली होती, इंटेंशनली होती, अपने इरादे से होती। तो यही वो लोग हैं जो दोजख में इनका ठिकाना है। काय के लिए? इसलिए कि वो जो कमाते थे गुनाह डेलिबरेटली करते थे, कमिटेड थे गुनाह पे। शाम में इंशाल्लाह शाम में क्लब में मिलेंगे, बिस्मिल्लाह बल्कि पते उठा, आ गया ना हजरत बोले, फिर देख रहा हूं सीन्स में, अच्छा बांटो मैं जरा असर पढ़ के आता हूं, चलो पत्ते बट रहे हैं तो असर की नमाज पढ़ गए। फिर पूछ रहे हैं ऐसा जायज है ना, क्या बोलूं? मतलब कोई बड़े आलिम को लाना पड़ेगा भाई ऐसे फतवे देने के वास्ते। तो ये बात ये समझिए कि ये कसब क्या होता है, कमाई, कमाई करना, गुनाह को कमाते हैं डेलिबरेट। देखिए इत्तेफाक से जो है आप पत्थर था रास्ते में ढकले, इत्तेफाक से छोटा बच्चा आ गया, लग गया, गुनाह नहीं, अनइंटेंशनल है। लेकिन आप देख रहे हो उधर से बच्चा आ रहा है, आप जब इंटेंशनली मारे तो जो है वो गुनाह होगा, आप नियत से मान रहे हैं। तो ये बुरी नियत रख के जो ये लोग ऐसे कामा करते, ये चार कामा करते कि हमारे से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं, उससे मुतमईन है, इत्मीनान है उनको, और हमारी आयतों से गाफिल है, कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं, अमल नहीं करते कुछ नहीं। यही लोगों का ठिकाना है। इन्ना लजीना आमनू आमिलु सालिहाती, एक एक आयत है साहब, अल्लाह ताला का कलाम है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, यहदीहिम रब्बहुम भी ईमानीहिम, अल्लाह ताला उसको रास्ता दिखाएगा उनके ईमान के जरिए। ड्राइविंग फोर्स कर दिया है अल्लाह ताला अंदर ईमान। इसका सबूत इंशाल्लाह आप यही सूरत सूरह यूनुस की 99 और 100 आयत में पढ़ेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको ईमान पे जमा करता, क्या तुम जबरदस्ती करोगे कि तो ये ईमान लाए? फिर 100 आयत है कि कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ताला की इजाजत ना हो। तो ये अल्लाह ताला का करम है, ईमान ड्राइव करके लेके आया आपको, ड्राइवर ईमान, आप समझे स्कूटर लाई, गाड़ी लाई, बस लाई, नहीं, ईमान लेके आया। तो अल्लाह ताला एक मैकेनिज्म बना दिए, अंदर डाल दिए, ये करम है मालिक का, बहुत बड़ा करम है। कितने लोग कहां कहां बैठे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा करम है कि ऐसी महफिल में जिससे फरिश्ते घेर लेते हैं, अल्लाह के घर में अल्लाह का कलाम समझने सुनने अमल करने की नीयत से अगर कोई बैठा है। तो बोल रहे हैं कि हम जो है ऐसे लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाते हैं उनके ईमान के जरिए से, कंट्रोल ड्राइविंग फोर्स रहता है। तजरी में तहती हूं मुल अनहारू फी जन्नत नईम, और वहां उनके लिए जो है बेहतरीन बागात होंगे जिनके नीचे नदियां बह रही होंगी। दावा हम फीहा सुभाना सुभाना कल्ला हम मां, और उनकी वहां पुकार होगी कि पाक है अल्लाह तू, अय अल्लाह तू पाक है, तमाम डिफेक्ट से फ्री है। देखिए सबा तैरने वाले को बोलते हैं तैरना, तो तैरने वाला पानी की सतह से ऊपर रहता, पानी उसके नीचे हो जाता। तो अल्लाह ताला तमाम चीजों से बुलंद है, पाक है, नो डिफेक्ट, डिफेक्टलेस है। तो जाके जन्नत में बोलेंगे कि उनकी पुकार होगी कि सुभानक अल्लाहुम्मा तहियतुहुम फीहा सलाम, उनकी वहां ग्रीटिंग, उनका रिकॉर्ड, उनका वेलकम। तहियत का मतलब क्या है कि क्या होगा? सलाम, सलामती, पीस, यानी पीस ही पीस होगा। अब जरा थोड़ी अपनी नमाज का तरफ आइए, अतहियात तो लिल्लाह सलवात तो तैयबात। तो अतहियात का मतलब क्या हुआ? अतहियात का मतलब हुआ ग्रीटिंग्स, वेलकम, रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट। अच्छा तहिया हई से है, जिंदगी से, यानी जीते रहो, ये तहिया है। हयात, लंबी हयात की दुआ देना, اچھی زندگی کی دعا دینا. تو یہاں آپ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ یا اللہ تمام ریگارڈز ریسپیکٹ آپ کے لیے, عطیات للہ, وہ صلوات اور یہ جو رجوع ہونا ہے وہ آپ کے لیے, طیبات اور تمام پاک چیزیں آپ کے لیے ہیں. اب معنی معلوم ہوں گے تو جب معلوم ہوگا, کہ کئی لوگ انگلی اٹھاتے مگر نہیں معلوم ہوتا کہ کئی کو اٹھاتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ گواہی دے رہے ہیں ایک ایک ہے اللہ ایک ہے بول کے گواہی دے رہے ہیں, تو معنی ہی نہیں معلوم. بہترین دعائیں نماز میں آ رہی, سورہ فاتحہ کے معنی نہیں معلوم. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ جب شروع شروع اجتماع یہاں ہوتا تھا, بعض لوگ ماشاء اللہ اب بھی ہیں, تو ایک وقت میں عربی میں کرنے کے بجائے اردو میں دعا کرا تو بچے رونے لگے. وہی ہر اتوار کو وہی دعا ہوتی تھی, مگر دعا جب سمجھ میں آئی تو دل کو لگی. دعا ہی نہیں معلوم آپ کو. میں وہی بولتا ہوں, تیلگو ایکٹر سے ہندی فلم میں کام کرا رہے ہیں, اس کو ہندی آتی ہی نہیں, تیلگو میں اسکرپٹ میں تیلگو میں لکھ لے کے بول رہا ہوں, وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا. ایک ایسا آدمی غزل سنا رہا ہے جس کو اردو نہیں آتی, تو وہ ہماری قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں. تو یہاں عطایات کا مطلب سمجھنا ہے کہ تمام ریگارڈز ریسپیکٹ, تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اب یہاں تحیتہم فیہا سلام, وہاں جنت میں ان کو جو ہے پیس ہی پیس, سلامتی ہی سلامتی ہوگی. وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, اور ان کی آخری پکار, فائنل پکار جو ہوگی ہے الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریف سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا مالک ہے, عالمین کا پالنے والا. تو یہ جو ہے جنت میں ان کی پکار ہوگی. تو یہاں آج میں روک دیتا ہوں, حالانکہ دو رکوع کا اعلان ہوا تھا لیکن ایک رکوع ہی ہوا. دیکھیے کوانٹیٹی سے سوال نہیں ہے, کوالٹی ہونا ہے. بات دل میں بیٹھ گئی تو بس ہے. آج کے احادیث میں بھی جو ہے دنیا اور آخرت کئی کمپیریزن ہے. پہلی حدیث ہے یہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد کی ریفرنس ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جس زمانے کا آپ حال بیان فرما رہے ہیں, اس زمانے میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لینے کے لیے قوم متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اس زمانے میں تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے, لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہوگی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. دو ہی چیزیں بتائیں. اب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ لے لیجیے آپ. عراق پہ جب حملہ ہوا, 29 نیشنز کیم ٹوگیدر, 92 کی جو وار ہوئی جہاں تک مجھے یاد ہے, 29 نیشنز کیم ٹوگیدر. تماشا دیکھ رہے تھے ہم لوگ. ہمارے بچے جو فلسطین میں ہیں وہ پتھرے لے کے مار رہے تھے ٹینکوں پہ, کیونکہ انرجی خراب, ٹینک کو پتھر سے کیا ہوتا, بندوق کی گولی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پتھر سے کیا ہوتا. یہ کمپیریزن تھا ان کی اسٹرینتھ کا اور ہماری اسٹرینتھ کا, پورے مل کے مارے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم کم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد بہت ہوگی. 6 بلین میں 1.2 بلین ہم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں, 6 بلین کا پاپولیشن ہے اس وقت, 1.2 بلین ہم لوگ ہیں, اے ویری میجر کمیونٹی. کرسچنز تھوڑے سے ہم سے زیادہ ہوں گے, لیکن ریزن کیا بتا سمن, یعنی جھاگ کی طرح ہوگے. جھاگ کیس کس کو بولتے ہیں؟ فرات جس کو بولتے ہیں آپ, صابن ملے تو کف آتا, پھوکے تو کف اڑ جاتا. یہی ہو رہا, کیا حدیث ہے صاحب, یہ پھوکے تو اڑ جا رہے ہیں, کوئی صحیح نہیں ہے آپ کا, کہیں نہیں ہے, نہ لیڈروں کا ہے نہ ہمارا ہے, کسی کا صحیح نہیں, پھوکے توڑ جاتے. تو پھر یہ وجہ کیا ہوگی اتنے ہونے کے باوجود؟ تو بولے دو چیزیں ہوں گی, اس کی بات یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے. دنیا ہی دنیا ہے بھائی. جو لوگ بےچارے جھوپڑی میں ٹن کے گھروں میں رہتے تھے, آج بڑے بڑے فلیٹس خریدے ہوئے ہیں, مڈل ایسٹ سے پیسہ مل رہا ہے, آ رہا ہے, دولت ہے, دنیا کی محبت ہے, کما رہے ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے بھائی, وہ میں تو جب اندازہ نہیں تھا, بولے 1400 का जूता है साहब। मतलब बाबा एक जमाने में 1400 तनख्वाह नहीं रहती थी, आप जूते मार रहे हैं 1400 के। तो अभी क्या है, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया की रग़बत। आप शादियों में देख लीजिए, आप ड्रेसिंग में देख लीजिए, आप खानों में देख लीजिए, हमारे उतनी दुनियादारी कोई कौम इस वक्त नहीं कर रही। ये हदीस है, ये होना होना है, जरूरी है। और फिर दूसरी बात बता रहे हैं कि और मौत से नफरत करने लगो। साहबा का क्या हाल था भाई? जंगे ओहद में कई साहबी इसलिए आए कि जंगे बदर में उनको शहीद होने का मौका नहीं मिला, शहादत की खातिर जंगे ओहद में शरीक हुए। हमारे पास बेचारे कोई जमात के लोग आ गए, आके बोले भाई वो इज्तिमा हो रहा, आओ बोले तो अंदर से इशारा करते नहीं है, खाली जाके मस्जिद में बैठना है, सुनना है, नहीं मालूम कब दिल पे बात लग जाए किसी की। तो ये वजह है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। यानी मतलब फिर इसका नतीजा हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि दुनिया की रग़बत कम करें। आगे की हदीस में बात आ रही है, दुनिया की रग़बत कम करें, मौत से नहीं डरें। मौत तो जब आने की है, आने की है। अब वो मेरे कोई पेस मेकर डाले बात, कोई साहब आके बोले चलो भाई अल्लाह, मतलब देखो मियां बात समझो, हयात नहीं बढ़ी इससे, हयात जितनी है उतनी छे रेक्टिफाई हुआ। ये डालते वक्त भी मर गए लोग, बाईपास की सर्जरी, हमारे कोई रिश्तेदार थे, बाईपास की सर्जरी हुई, खत्म होते हार्ट अटैक होके खत्म हो गए। इससे जिंदगी तवील नहीं होती, मौत का तो वक्त लिखा हुआ है। साहबा को इस पर यकीन था तकदीर पे, जब ही तो जान पे खेल जाते थे, 20-20, 21-21 जमा। तो ये बात हमारे जहन में हो। दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करेगा वो अपनी आखिरत को तबाह करेगा, और जिस शख्स को अपनी आखिरत महबूब होगी तो वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐ लोगो, तुम बाकी रहने वाली जिंदगी को फना हो जाने वाली जिंदगी पर तरजीह दो। हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरत बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है मौत के बाद की जिंदगी, ये जिंदगी तो खत्म हो जाने वाली है। बहुत जी गए साहब, बखल किसी के बोनस में जी रहे हैं, बहुत जी गए। अब ये उम्रों में भी पहुंच के अल्लाह याद नहीं आया तो फिर कैसा होगा? तो यहां बोल रहे हैं कि देखो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दोगे तो आखिरत की जिंदगी को जो है नुकसान पहुंचेगा, और आखिरत की जिंदगी को तरजीह दोगे तो दुनिया में नुकसान पहुंचेगा। नहीं, मैं भी अल्लाह के फजल से पढ़ा लिखा हूं साइंस का, अगर यही वक्त अगर मैं प्राइवेट ट्यूशन्स में ले लिया तो आज के हिसाब से 1-2-3 हजार तो कमा ले सकते हो, मजे में कमा ले सकते हो। ये वक्त निकालो उधर लगाओ, बल्कि अब ये सोचे कि भाई छोड़ो दुनिया क्या है, बहुत कमा लिया अल्लाह ताला घर बिठाए दे रहा, चलो इधर लगो तो आप आखिरत ठीक होंगे। तो अब हम ये सोचना कि अब जैसा हमारे पास दुनिया क्या हो गई, हमारे पास एंटरटेनमेंट बहुत हो गया है। एंटरटेनमेंट में देखे बखल किसी के बड़ी प्यारी मिसाल दिए, नमक बड़ी अच्छी चीज होती है सालन में, फिक्का सालन अच्छा नहीं दिखता, मगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी रहती है। आप बोले नमक बड़ा जबरदस्त रहता, आज 1 किलो नमक डाल दो मियां सालन में, नहीं खा सकते आप। तो हमारी जिंदगी में 1 किलो नमक आ गया है, टीवी आ गया, इतना वक्त खराब हो रहा है, इतना वक्त खराब हो रहा है कि जिक्र कुरान हदीस इसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो एंटरटेनमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था एंटरटेनमेंट। मैं आपको कई वाकया सुना सकता हूँ। हजरत आयशा रजीला ताला ना आपके खानों पर खड़े रह गई थी, वो पहलवानों की कुश्ती चल रही थी तो देखने के लिए, कहीं शादी हो रही थी वो डब बजा के वो बच्चियां गा रहे थे, बदर के शोदा के शान में गा रहे थे, आए तो आपकी शान में गाने लगे तो बोले नहीं नहीं पहले जो तुम गा रहे थे वही गाओ, मेरी शान में मत गाओ। तो मालूम हुआ कि खुशियां मनाई जाती थी शादियों में भी, ऐसा होता था। लेकिन ये कि भूल गए अल्लाह ताला, अभी दावतों में नहीं जा रहे, सीरियल मिस होता। एक दावत में 5 लोग थे एक वक्त, कोई बहुत मशहूर पिक्चर बताया जा रहा था, कोई रिश्ते नातों का ख्याल नहीं। तो बोल रहे हैं कि देखो अगर आखिरत चाहते हो तो दुनिया का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, और दुनिया चाहते हो तो फिर आखिरत का नुकसान होगा। आज की आखिरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि होशियार दर हकीकत वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में किया और मौत के बाद आने वाली जिंदगी संवारने में लग गया, और बेवकूफ वो है जिसने अपने आप को नफ्स के नाजायज ख्वाहिशों के पीछे लगाया और अल्लाह से गलत तवक्को बांधी। तो हमारे पास ये है, अरे अल्लाह गफूर रहीम है, कुछ भी कर लो आप, اللہ مغفرت کرنے والا ہے. بولے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ملے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو کفر کریں گے ہمارے آیات کو جھٹلائیں گے, نہ ایمان لائیں گے نہ عمل کریں گے, وہ تو جہنم میں رہیں گے. تو مغفرت کس کی ہوگی؟ قرآن سے ثابت ہے. میں بار بار بات لمبی ہوتی مثال دیتا ہوں, میں بہت سے لوگ بولتے ہیں مثال سے بہت اچھا سمجھ میں آتا کہ بھئی ایک دو ٹیبلز بنوایا میں, ایک کونے میں رکھنے ایک کونے میں, ایک دو دو, دو ہزار کی قیمت تھی, ایک ایک ہزار دونوں کو ایڈوانس دیا. ایک بڑا ہی ٹیبل بنا کے لایا, بولا صاحب لاتے ہوئے جو ہے یہاں سے ذرا دھکا لگ کے رکشہ میں تھوڑی سی چپ نکل گئی. بولے چلو میاں جانے دو, باقی کے ہزار دے دیے, رکھ دیے. دوسرا بڑا ہی ٹیبل لے کے بھاگ گیا, روپئے ایڈوانس لے کے بھاگ گیا. انہیں ملا تو میں اس کو اور ایک ایک ہزار روپیہ دوں گا یا پولیس میں دوں گا, سزا دوں گا اس کو. تو مغفرت کس کی ہوگی؟ آپ کے احکامات پہ عمل کرنے میں جو غلطیاں ہو گئی. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا ہے کہ یہ ایک عجیب سی بات ہوتی کو کچھ بھی کر کے جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. بولے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کو معاف کرنے والا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ نفس کو قابو میں موت کے بعد آنے والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا سمجھدار وہ آدمی. تو موت کے بعد آنے والی زندگی میں سنبھالنا بولے تو یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جانا, پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جانا, نہیں, یہ تو کرنا ہے. پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تو حدیث سے. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں, ایک صاحب جا رہے تھے تو کوئی صحابی نے کہا کہ یہ جتنی محنت دنیا میں کرتا ہے اگر یہ آخرت میں کرتا تو جنتی ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے کما رہا ہے, اگر یہ بچوں کو پالنے کے لیے کما رہا ہے, اگر یہ بوڑھے والدین کو پالنے کے لیے کما رہا ہے تو یہ جنتی ہے. دنیا سے نہیں روکا گیا, واہیات چیزوں, گناہوں کی چیزوں سے روکا گیا ہے. تو ہم کو دنیا کرتے ہوئے دین دنیا میں ہی چلانا پڑے گا نا, نوبت پہاڑ پہ جا کے نہیں کر سکتے نا دین. پورا ہمارا جو ہے دین دنیا میں چلنا ہے. تو اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگا دیا, جو خواہشیں جائز نہیں اس کے پیچھے کر دی. نہیں, وہ اماں کی آرزو تھی, بابا کی آرزو تھی, شادیاں تماشے کے ہو رہے ہیں, ان کی آرزو تھی, آرزوؤں کی شادی, بڑے آرزوؤں کی شادی ہوئی. بھائی بولے اب وہ آرزوؤں کا کیا نتیجہ نکلتا؟ بس اللہ معاف کرے, بس اللہ ہم سب کو معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.